So I have no words to describe how holy this place is that we are now sitting. All I can tell you is that my older godbrothers have told me that one time they passed by the doorway of this place and Prabhupada put his hand through the door, took some dust on his head. Maybe you should put the microphone, the speaker away. Where's the speaker? You should come a little forward, otherwise it's making this funny vibration. So Prabhupada touched this dust to his head, and then he said, I am not qualified to enter this place. So you try to understand what type of place we're sitting. As we've traveled throughout Braj on this holy parikrama, we have been constantly hearing the glories of seva, doing service, especially serving the devotees. That is the real mood of Braj. That is the actual Braj Bhav, this Bhav of service. We don't find, I've talked to many sadhus, there's no other place like Braj. If you want to come here and simply do bhajan, then you can walk every day with your hand outstretched and people will give you roti, sabji, kheer, sag, whatever you need. If you just come here to do bhajan, the Bishwasis, they're very, very happy to feed you. All right, you don't have to do any business, you just come to our house, take some roti and do your bhajan. No other business, not collecting money, not doing business. You just come here, do bhajan, whatever the Bishwasis give, you accept. Just like I told the other day the story, there's another very holy and ancient Vaishnav named Deen Bandhu Das, Babaji Maharaj, who has his temple at Nasik. So he told me, because I'm a little misunderstood the story because he was talking very excitedly in Hindi, but later Giriraj Maharaj said he had heard the same story and the detail, the same bhav, but the detail was different. But there was a meeting here in Braj of all the Chirasi Coast Gaudiya Babajis. And the subject matter is whether they should go outside of Braj or not. So, as the Giriraj told me, actually what happened was, see, the Prabhupada was inside and all the other sadhus were on the opposite side. I heard that it was Dinabandhu, but Dinabandhu was reminding Prabhupada that I was in that meeting. So he had told them, if you want to do Brajavas, all right, then you go every day with your hand out. And whatever you get, you take and do your bhajan. But if you want to sit here in Vrindavan and send letters back to Bengal, back to Calcutta, that please send me money, I'm here in Vrindavan, then you go outside and preach. If you want to do Brajavas, then go with your hand like this, and whatever you get, you accept and do your bhajan. If you want to write, please send me money, you send me money and do your bhajan here, then you go and preach for those people who are sending money. So anyway, there's no place like Braj. You can just, people are, actual bhav is a seva. So here we're sitting in this seva kunj. Here we find even the Supreme Personality of Godhead himself is doing seva. During the rasa dance, they were dancing and dancing and dancing and dancing. When they became a little tired, then they came to this beautiful kunj, a tiny piece. This is not the whole seva kunj, extends for quite some distance. Only this little tiny piece has been saved in its natural beauty. So here in this beautiful seva kunj, then that same Supreme Personality of Godhead, whose lotus feet are being served by hundreds and thousands of goddesses of fortune, whose lotus feet are meditated on by all the great sages and rishis, whose lotus feet are meditated upon by and worshipped by all the 33 crore demigods, that same Supreme Personality of Godhead was massaging the lotus feet of Bhishpananandini, Sri Radhika. So even Supreme Personality of God Himself was doing seva here in this Vrindavan. So that is real mood. In this beautiful kunj. Some people have the idea that in this place Rasa Leela is taking place. Whole Vrindavan. Tomorrow we'll do the Prakrama. Whole Vrindavan Rasa Leela was taking place. That is why this town, because that Vrindavan, that forest, Prabhupada writes in the Krishna book and also in purport in Srimad Bhagavatam, that this Vrindavan, this forest of Vrindavan, stretches from the now called town of Vrindavan 32 miles up to Nandagram. That is the forest of Vrindavan. This town, Vrindavan, this is where the that most holy of all pastimes, Rasa Leela, was taking place. And in this corner, this is the kunj where Radha and Krishna retired to with all of the sakis. And Sri Krishna himself, Nanda Nandan, Brijinda Nandan Shamsundar, was massaging the lotus feet of Srimati Radhika. We cannot even begin to estimate the holiness of this place. I have no words to describe, only that incident Prabhupada said, I am not qualified to enter. So neither we are qualified to enter, but somehow it's like we are chanting holy name with so many offenses. So what to do? Unless we chant and practice, how will we be able to chant the pure name? So we're not qualified to enter here, but unless we enter here and become purified, then how will we ever become qualified? We can just bow down in the dust of this holy place and pray for the mercy of Sri Guru and Gauranga and all the Vaishnavas and our spiritual masters, that maybe after millions and millions of births we'll be actually qualified to enter this place. So then we can just take the dust of this place on our heads and whatever tiny level we can appreciate, we can try to appreciate and try to think that somehow or other now I'm in this most holy place, I should try to be in a very, very serious and grave mood in this place. As Ramnath Swami said, we should try to become beggars. We don't want to come here thinking that I have some qualification of any sort whatsoever. Then we become the proper recipient. Mercy is such a thing, it is like water, it flows down. And wherever it finds a hole, it goes in, it fills up that hole. Makes it complete. So, that mercy comes, mercy flows down. So unless we become very down, trinadapi sunichana, taroapi sahishnana, amanina, amanadina, kirtaniya, sadahari, how we can get that mercy? And if we become down, that mercy will come in and fill up that huge hole that is there and top it off. It'll be complete. We'll become complete. That is the meaning of mercy. We have no qualification. But that mercy flows into that deep depression and fills it up. Just like Narottam Das Thakur has sung,
Bye.
Patita Pavana Hetu, Toma Avatara, Mosamo Patita Prabhu, Na Paibe Ara. There's some request that I speak in Hindi, so how many people don't know Hindi? Whoever doesn't know Hindi, we have a few hands right here. Is there anybody who wants to do this? This is Seva Kunj. If you want to do some service, keep your hands raised. Somebody who knows English should sit beside those persons who only know English, who don't know Hindi. Raise your hand. Somebody should go nearby them. You have someone to translate for you? All right. Anyone here? You have someone? Sanatam batate heke patita pavana hetu toma avatar. Ki aapke avatar ke hetu athava karan, aapke avatar ke karan hai, kya? Patita pavana. Jaise hum log kal gaye the, kaun sa sarovar? Pavan sarovar. So patita, hum log patit hai, patit. Matlab gira hui, patit. So patita bhavana hetu toma avatar. Aapke avatar ka hetu ya karan hai, reason patita patiton ka udhar karne ke liye. Mosamo patita prabhu na paibe ara. Aur prabhu aap kahin bhi nahi milenge aise patit jaise main. तो प्रभुपाद इस श्लोक का अर्थ निकलते हैं क्या बताते हैं इसलिए प्रभुपाद कि नारायण हमारा नकल कर रहे हैं ही इज टेकिंग आवर प्लेस आवर पार्ट कि जब आपके अवतार के खाने पतितों को उदार करने के लिए और मैं सबसे पतित हूं मुझसे जैसे पति खाई भी नहीं मिलेंगे मैं सबसे पतित हूं इसका अर्थ क्या है कि मेरा उदार सबसे पहले होना चाहिए ASAP हम लोग अंग्रेजी में बताते एज सून एज पॉसिबल ASAP प्रायोरिटी मेल आई हैव प्रायोरिटी मैं तो सबसे पति हूं तो सबसे मैं आई हैव प्रायोरिटी मुझे प्रायोरिटी बेसिस में मेरा उदार करना चाहिए तो प्रभु बताते ये है रहस्य कैसा हम श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल सकते हैं अगर हम सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं सुंदर हूं तेज वाले हूं किसी भी एक प्रकार विद्वान हूं मैं खुश है तो फिर ये चैतन्य महाप्रभु हमको छोड़कर वो दूसरे के पास चले जाएंगे जब हम सोचते हैं कि मैं सबसे पति हूं तो तुरंत महाप्रभु हमारे पास आ जाएंगे और जैसे हमने बताया था कृपा तो नीचे जाते और जो नीचे जाते ये जो छेद है गड्ढा है उसका पूर्ण करते हैं ये तो कृपा मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे कोई गुण नहीं है कोई योग्यता नहीं है लेकिन कृपा से मेरे योग्यता हो जाते हैं और ऐसे कृपालु हो जैसे श्री चैतन्य में हो कहीं नहीं है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो बताते हैं कि एक बार एक चक्रवर्ती महाराजा थे पूरा भूमंडल का चक्रवर्ती राजा थे वो तो रोज भंडारा बनाते थे लाखों लोग प्रसाद खाते थे रोज इतना इनके पास इतना धन था कि लाखों लाखों लोग रोज उनका भंडारा में आते थे इतना महान महान चक्रवर्ती राजा थे लेकिन एक दिन थोड़ा सा मदिरा पीकर वो उन्मर हो गया और अपना ट्रेजरी मतलब खजाना खजाने का दरवाजा छोड़कर Jobi, Hira, Panna, Ratan, Neelmani, jo kuch dhan inke khajane mein tha, wo sab ko distribute kar, bithan karne lage. Sab ko, jo bhi aaye, kisi, ye sabse niche aadmi ko, sabse gareeb aadmi ko, itne mote mote hira, panna, ye bangi ke haath mein bhi de diye. So bangi ka, iska kya likha hai, ki itna bada hira. हम तो देखे वॉशिंगटन डीसी में ये होप डायमंड इतना बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा भी हीरा अगर किसी बंगी के हाथ में आ गया, उसके क्या अधिकार है? तो कोई अधिकार नहीं है ऐसे वेतन इनके पास होने से, कोई अधिकार नहीं है. लेकिन राजा स्वयं उन्मद होकर वो स्वयं उसके हाथ में दे दिया, कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी पर उनके पास आए थे ही उनके पास. उसी किसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, और ये सुंदर सुंदर रस ये सुंदर सुंदर राधा भाव ज्युति सुवालितम श्रीमती राधा राधी का भाव पीकर एकदम उन्मद हो गया, और सबको जिसका जो कोई अधिकार नहीं, कोई गुण नहीं, किसी प्रकार का योग्यता नहीं, सबको ये कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम का वचन दे रहा है. हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम सबको दे रहा है. तीनों हीनों जाते चीलो सबको. हमारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये रस, ये राधा भाव का रस पीकर एकदम उन्मद हो गया. हमारा कोई गुण, हमारा कोई योग्यता, हमारा कोई अधिकार कुछ नहीं है, लेकिन किसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने दयालु ये उन्मद में हमको ये कृष्ण प्रेम का रतन दे रहा है. हम लोग क्या करते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण. न अमूल्यवान रतन हमारे पास है, हम सो रहे हैं. हरे कृष्ण. अब सोचिए चैतन्य महाप्रभु ये हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ये सबसे मूल्यवान वस्तु दे रहे, कृष्ण प्रेम ये ब्रज प्रेम ले रहा है. ऐसा कृपालु कोई नहीं जैसे चैतन्य महाप्रभु. इसलिए हम लोग यहां आए, हमारा कोई अधिकार है इसके इस क्षेत्र में प्रवेश करने का, लेकिन नाम संकीर्तन सहित हम इसका प्रदीक्षण करेंगे और महाप्रभु की कृपा का स्मरण करके हम इस क्षेत्र में प्रदीक्षण करेंगे. यहां एक छोटा सा मंदिर है, बहुत छोटा, तो यह इनका अगर कभी आ सकते 6 बजे इसका मंगल आरती की, बहुत बढ़िया मंदिर है, 6 बजे की मंगल आरती की. और शाम को जब बहुत सबसे बेस्ट श्रेष्ठ शाम को लगभग जब अंधेरा सा हो रहा है 6:30 अभी आजकल मुझे मालूम नहीं 6:30-7 बजे के करीब आरती होते हैं, बहुत ही सुंदर आरती. और फिर सब लोग ये बंदर भी सब लोग यहां से निकलते हैं. ये ब्रजवासी गान बताते हैं कि कोई रह जाते रात को या सुबह वो तो मर गए और एकदम पागल हो गए. ये तो ब्रजवासी गान हम तो कभी नहीं यहां स्टे किया, लेकिन हम सुनते हैं सब विश्वासी के मुख से. और हम स्वयं देखते हैं कि ये सब बंदर चले जाते हैं यहां से भी. और आप स्वयं देख सकते हैं कि यहां आपके बॉम्बे के विपरीत यहां तो ये वृक्ष सीधे नहीं जाते ऊपर, इस आपके बॉम्बे में ये सब वृक्ष यहां ये सब इतना कृष्ण प्रेम ये सब फिकल जाते हैं ऊपर का प्रयास करते, लेकिन फिर दोबारा फिर आप देख सकते हैं कोई वृक्ष ऐसा लेट करके वो ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं. रिपोर्ट विचित्र बन है. सो थोड़ी देर में हम ये मंदिर केवल थ्रू हम प्रवेश करेंगे थरम चले जाएंगे क्योंकि वहां लगभग 30 लोग अधिक से अधिक देख सकते हैं. इस मंदिर छोटे से मंदिर है जहां आप देख सकते हैं चित्र ठाकुर जी वो श्रीमती विश्वानंदनी श्री राधिके के चरण का मालिश करें चरण सेवा करें सेवा कुंज. फिर हम लोग जाएंगे यहां से पास में इमलीथाला जैसे महाराज सुबह बताया था इमलीथाला जहां भगवान श्याम सुंदर विजयनंदन जब ये दास लीला से चला गया तो वहां बैठकर राधावानी की विराह में वो राधे 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 के जप कर रहा था और राधावानी के स्मरण से इनका पूरा शरीर घोर वारण हो गया. आप लोग तो कहे अक्रूर घाट तो वहां से महाप्रभु यह नाते थे इमलीथाला के नीचे बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. और ठाकुर जी के स्मरण ब्रजेंद्र नंद श्याम सुंदर के स्मरण करके वो श्याम सुंदर का भारण भी होगी उसके पूरे शरीर. श्याम सुंदर राधिका का स्मरण करके वो गोरबाण हो गया और महाप्रभु ठाकुर जी का स्मरण करके वो श्याम वर्ण हो गया. इसी स्थान अभाग्य है कि कुछ साल पहले ये इमलीथाला अप्रकट लीला में प्रवेश किया है. एक नया थाला अभी वृक्ष आ रहा है. तो वहां बहुत छोटा स्थान है भी तो हम लोग केवल एक ट्रांसेंडेंटल सांप के जैसे अंदर जाएंगे वापस चले जाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे श्रृंगार घाट. सभी ये स्मरण रखने से कि ये इतना पवित्र स्थान है हम लोग सबसे पहले इस रज में प्रणाम करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि एक दिन शायद हजारों लाखों जन्म के पश्चात हम समझ सकते हैं कि ये स्थान क्या है और फिर ये छोटे मंदिर के प्रवेश करके हम ऊंचाई का प्रेडिक्शन करके वो हम यहाँ एक ललित कुंड है जहां ठाकुर जी अपने बंसी से एक कुंड बनाए. ये छोटा सा स्थान है ललित कुंड. फिर हम लोग यहां से ये इमलीथाला जाएंगे. वहां हम कुछ प्रवचन कथा नहीं करेंगे क्योंकि छोटा स्थान है क्योंकि वो अंदर जाएंगे प्रणाम करेंगे ये इमलीथाला के वृक्ष का प्रदक्षिण करके वापस और शायद अगर कोई रास्ता है वो ये वृंदावन पिकमा मार्ग से जाके श्रृंगारवाद में पहुंच जाएंगे. जय जय तो कुछ लोग फिर भी सोचते हैं कि मेरे पास कुछ अधिकार है कुछ गुण है इसलिए मैं भिखारी के रूप में राधावानी की कृपा नहीं मांगना चाहिए. तो हम लोग तो भिखारी हैं. हम तो बहुत ही नीचे 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 है. हम तो एक बाबा बताते अंधकूप जब अंधकूप में कोई नहीं सुन सकते अंधकूप में और हम ये अंधकूप में गिरा हुए. तो जब तक आप बड़ी जोर से बड़े प्रेम से नहीं बोलेंगे तो राधा रानी हमारा पुकार नहीं सुनेंगे. Just to make sure, one more time. बड़े प्रेम से बड़ी जोर से जय जय श्री राम. पहले सुरावी कुंड गोवर्धन के निकट हमने ये राधे जय जय श्री राधे का वर्णन किया, लेकिन हार उठाने का क्या अर्थ है? हम लोग हार उठाते क्यों? जैसे ये जब हम प्रक्रम में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब थक जाते हैं तो माता माता मम्मी मम्मी ऐसे करते ना, तो इसी भाव से हम लोग तो बोलना चाहिए इस पवित्र रथ में प्रणाम कीजिए, हम लोग आगे चले जाएंगे।